وبركاته. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. إمام اتصال بين أرض وسماء، اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان جو متصل کرنے والی ذات حجت ہے وہ امام ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ. ان سے دوری تباہی ہے. آج انسانی معاشرے میں جتنی بھی تباہیاں ہیں، ہوا وبا کی صورت میں ہوں یا اخلاقی وبا ہو، مورل کرپشن ہو، یہ تمام ان سے دوری کی وجہ سے. بہترین علاج یہی ہے کہ ہم اپنے کردار سازی کریں، اس انقلاب جہانی کے قابل ہو جائیں جو عدل پر واقع رہے گا، سچائی، امانتداری سر فہرست رہے، اور پھر فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفي قرآن دعا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان گرامی، یہ ایام مبارک باد ہیں، خصوصا نو رجب، اس کے بعد 13 رجب. یہ 4 دنوں میں ہم نے جو موضوع رکھا ہے، امامت اور معجزہ. گزشتہ جو پریزنٹیشن تھا اس میں ہم نے عرض کیا تھا، جو کمبینیشن، جو کامن بیلیوز ہیں ہمارے اور برادران اہل سنت کے درمیان امامت کے سلسلے میں کیا ہے، اور جن کو دیکھنا ہو تو وہ گزشتہ پریزنٹیشن ضرور دیکھیں. میں ریپیٹ کروں گا تو پھر ٹائم نکل جائے گا. آگے بڑھتے ہوئے، ہم لوگ امامت کو عہدہ الہی مانتے ہیں، اسی طرح سے یہ ڈیزگنیشن ہے نبیوں کو جس طرح سے ملتا ہے، رسولوں کو جس طرح سے ملتا ہے، جس طرح سے انبیاء کو ملا ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یہ عہدے، یہ ڈیزگنیشن انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. اور اللہ نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا ہے، فحبتوا منها جميعا، آدم و حوا ابلیس نکل جاؤ، زمین پر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدَايَا، میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت اللہ کی طرف سے خواہ تکوینی ہو خواہ تشریح. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب ہے جس نے ہر شے کو خلقت بخشی. رب و رب کا یخلق ما یشاء و یختار، اللہ جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہدایت بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہادی بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ان علینا للہدا و ان لنا للآخرۃ والاولی، ہمارے ہاتھ میں ہدایت ہے، ہمارے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی. ابھی ایک چھوٹے سے COVID-19 نے دنیا کے سامنے سے بتا دیا کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. آواز قدرت مسلسل آ رہی ہے، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کس کے لیے ملک؟ ایک چھوٹا سا جرسوما بڑی بڑی حکومتوں کو کے گھٹنے ٹکوا دیا ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیارات نہیں ہے. اور یہ وبا آئی ہے اور نکالنے والا بھی اللہ کی ذات ہے. اسی لیے رہبر معظم نے صحیفہ کاملہ کی چھٹویں دعا، اور یہ بہترین موقع ہے، آپ لوگ جو ہے خصوصاً جو ناظرین ہیں، اس کو انگلش ترجمے کا چھوٹا سا بنائے کارڈ خوبصورت، اور اپنے پڑوسیوں کو، جاننے والوں کو جو نان مسلم ہیں ان کو دیں. یہ سلیقہ ہے ابلاغ دین کا بھی، ہدایت اللہ کرتا، نہ جانے کس کے دل میں یہ بات آ جائے. اور اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے وباؤں کو نظام الہی، اللہ کی طرف سے آنے والے بلائے ہیں، اور اس کا ٹالنے والا بھی وہی ہے. ان مہمات سے بچنا ہے تو اسی سے مانگنا، بھی مانگنا. قرآن کی یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، بس ہے اتنا سمجھ جائے انسان، اے انسانوں انتم الفقراء، میں آیت کو نکال دوں. انتم الفقراء الی اللہ، سورہ فاطر 15 آیت ہے، پترواں 35واں سورہ ہے اور 15 آیت ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء، یعنی تم لوگ ڈیسٹیٹیوٹ ہو. او مین یو آر دے ہو اسٹینڈ ان نیڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. انتم الفقراء الى اللہ واللہ والغنی الحمید. تحفہ ہے آج، یہ لکھ کے رکھیے آپ، 35واں سورہ اور آیت نمبر 15، 15، 35، 15، یعنی یو آر ان نیڈ آف اللہ. اگر اس سال اس کو سمجھ جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ اللہ الصمد، اللہ کی ذات ہے. انا فقیر الی رحمتک وانت غنی عن العالمین، اور اس کو صرف زبان سے ادا نہیں کرنا ہے، حقیقت میں ایک ایک لمحہ ہمیں ضرورت ہے اس کی، یہ کنیکشن کی ضرورت ہے. جس مومنٹ ہم جدا ہو جاتے ہیں ہماری ونریبلٹی، ہماری تباہی بڑھتی چلی جاتی ہے. سورہ فاطر کی آیت اتنی خوبصورت ہے کہ انسان اس پر جتنا کام کرے کم ہے، جتنا کام کرے کم ہے، کہ انسان محتاج ہے، انسان مختار نہیں ہے. سمجھ میں آئی گی بات؟ جب یہاں تک پہنچے مقدمتاً آگے بڑھیں. سو محتاج ہر لحاظ سے ہے، ان میں ٹاپ آف دی لسٹ قرآن نے ہدایت کو قرار دیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدَايَا، میری طرف سے، میری طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، فَمَن تَبِعَ ہدا نہیں ہدایا، پھر میری ہی ہدایت پر جو اتباع کرے گا وہی کامیاب. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى، ہمارے لیے، ہماری ہاتھ میں ہدایت ہے، ہدایت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہادیوں کا بھیجنا بھی ہمارے ہاتھ میں. تو اسی لیے ذات پروردگار نے اپنے نمائندوں کے ساتھ ایک چیز رکھی، وہ اعجاز ہے، معجزہ ہے. انبیاء کو پرکھنے کا طریقہ یہی تھا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیسے مانے ہم کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، دلائل پیش کیجئے. جن کو عقلی دلائل کی ضرورت تھی عقلی دلائل دیے گئے. بعض لوگ ایسے تھے کہ جو ٹینجیبل دیکھنا چاہتے تھے اعجاز انبیاء کو، اعجاز مرسلین کو، انہوں نے بتایا. آج ہم امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سلسلے میں آج اور کل بیان کریں گے، پھر پرسوں ترسوں انشاءاللہ مولا امین المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام روحی و ارواحنا لہم الفدا. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ ہم نے گزشتہ پریزنٹیشن میں بتایا تھا، امامت ڈیزگنیشن ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہمارا شیعوں کا خاص پوائنٹ آف ویو ہے، یہی سے فرق ہے بٹوین آز اینڈ آور سنی برادرز. رہبری امت کی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، رہبری امت کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہادی اللہ کو بھی اللہ بھیجے گا، جس طرح انبیاء کو بھیجا، جس طرح رسولوں کو بھیجا، جس طرح سرکار رسالت ماؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری زندگی، ان کے بعد بھی یہ سلسلہ، یہ وحی، سلسلہ یہ ہدایت باقی ہے قیامت تک. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَايَا، میری طرف سے یقیناً یقیناً ہدایت آئے گی میری طرف سے، اللہ نے صاف اعلان کر دیا. ہم لوگ مکتب اہل بیت والے، ہمارے پاس بھی ٹو ایکسٹریم لائنز ہو گئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو برا کہنا، دوسروں کے لیے دوسرے مذاہب کو بون کرنا، یقیناً ان کو ڈیگریڈ کرنا، آزادی کا جھوٹا استعمال، خصوصاً یوروپ میں، خصوصاً لندن میں. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ انعام کی 108 آیت، جس میں ذات پروردگار کہہ رہا ہے کہ دوسروں کو برا کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے، دوسرے مذاہب کو تمہارا حق، برا ان کے بزرگوں کو نہیں کہہ سکتے. اب دیکھتے ہیں علل اعلان برا کہا جا رہا اور انڈر دی سپرویژن ہے ایک گورنمنٹ جو بہت ہی پیسفل کہتی ہے، بہت ہی ماڈرن، بہت سولائزڈ کہتے ہیں. ان کی سولائزیشن کا یہ اشارہ ہے، صرف مسلمانوں میں تقسیمات کرنے کے لیے وقت، اور کوئی نیتیں نہیں ہیں. درمیانی راستہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ، لیس انڈرسٹینڈ ایچ ادر. قرآن جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، کہہ کے لیے لتعارف، अल्लाह की ये हिकमत है कि अल्लाह ने शुऊब व कबाइल, ये ट्राइबल चीज़ें, ये रंग और नस्ल, ये जो तकसीमात है, अल्लाह ने ये हिकमत परवरदिगार है। तो अल्लाह ने क्या कहा, लितआरफु लितहारबु, नहीं है लड़ने के लिए, नहीं है आपस में पहचानने के लिए। बहुत मुमकिन है कि बहुत सी अच्छी चीज़ें गैरों में हैं, उनसे ले अच्छी चीज़ को। जैसे कि वह हदीस फेमस जो दोनों मजाहब में फेमस है, अल हिकमत दालतुल मोमिन फतलबूहा ऐनमा वजदा वला मिन काफिर वला मिन मुनाफिक। विजडम आपने खो लिया है, यू लॉस्ट इट, यू फाइंड इट एंड गेट इट बैक फ्रॉम वेयर एवर यू यू फाइंड। यानी जहां तुम्हें मिले ये हिकमत वो इल्म, तुम ले लो वहां से, ये तुम्हारी चीज। खब का नॉन बिलीवर के पास से खब आता है हिपोक्रेट। अगर कोई टीचर साइंस सिखा रहा हो, मैथमेटिक्स सिखा रहा हो, और उसकी उसकी लाइफ में हिपोक्रेसी, हमें कोई तो गरज नहीं है, हमें गरज है उसकी तालीम, उसके इल्म से। तो मकतब अहले बैत की खसूसियत जो है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, अलबत्त लॉजिकल हम प्रूव करते हैं कि हम जिनको मानते हैं उसके लिए दलायल है हमारे पास, उसके लिए प्रूफ्स है हमारे पास, उसके लिए हुज्जत है हमारे पास, और ये हुज्जत हमारे लिए जिंदगी है। और हम इस पॉइंट ऑफ व्यू पे रहेंगे, रहते हैं, खून दिया हमने, जाने दी, दीवारों में चुना चुनवाए गए, अभी तक भी कितना जुल्म हो रहा है इस मकतब में जानते हैं। दुआए इफ्तिताह में है कि परवरदिगार मखाफत अहद मिन अल खल्क, परवरदिगार वो जमाना आ जाए कि लोगों के डर से हम अपने अकायद, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी लॉजिक को पेश ना कर सके। अब लोग हुकूमतों के डर से नहीं कर सकते। अभी हाल में गुज़श्ता हफ्ते ही देखा आपने, हिजाज में ये बदबख्त फैमिली जिसने पूरे मुस्लिम उम्मा को हाईजैक किया है, इनको कोई बुरा नहीं कहता, जिनकी अय्याशी, जिनकी जिंदगी दुनिया जानती है। हिजाब में एक नौजवान लड़का जिसने कसीदा पढ़ा था अहले बैत अलैहिस्सलाम का, उसको जो खत्म किया गया, उसको एक्सक्यूट किया गया अहले बैत की। तो मालूम हुआ मीसम का जमाना खत्म नहीं हुआ, आज भी ऐसे मकाम आते हैं जहां पर लोग जाने दे रहे हैं। क्यों भाई, जबकि यूएनओ का कानून है, तुम्हारा चार्टर ऑफ राइट्स है, सब कुछ है, हमें हक नहीं है कि अपने अकायद को बताएं। तो इतनी बातें जो हमने की हैं इस बात के लिए कि हम लोग, यानी मकतब अहले बैत वाले, हम किसी की हठधर्मी को मानते नहीं है। कोई मेंबर बैठकर वो चीख पुकार करके साबित करना नहीं, लॉजिकल ठंडे बताइए 2+3=5, हम मानने के लिए तैयार। मैंने कराची में एक मजलिस में कहा था कि शिया न बम से न खुदकुशी, कोई खुदकुशी हमले से मारना चाहे, कोई गन से मारना चाहे, शिया मरता नहीं है, इसलिए कि शिया फिक्र है। अगर फिक्र को मारना है तो बंदूक से मारा नहीं जा सकता, बम से उड़ाया नहीं जा सकता। अगर फिक्र को मारना है, मैं बताता हूं, अगर शियों को मारना है मैं बताता हूं वेपन कैसे मारे। इनसे बेहतर, यानी अहले बैत की फिक्र से बेहतर ला करके पेश कर दीजिए, हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। और 1400 साल हर तरह की हुकूमतें गुजर गईं, किसी में दम नहीं है कि इस हक को कोई दूसरा ला सके इससे बेहतर, इसलिए कि हक है, यह हमारी फिक्र है। तो मंतिकी लॉजिकल गुफ्तगु हम लोग करते हैं, और ये जो सुनने वाले, मुमकिन है कि बहुत से सुन्नी भाई जो पढ़े लिखे हैं वो लोग भी सुने, और जरा टटोले अपने आप को कि वेयर वी आर, वेयर आम आई, कि ये कुरान है, ये लॉजिक है, ये मंतिक है, ये हदीस है। अभी आप अभी अभी बैठे बैठे देख लीजिए, सुन्नी भाइयों को देख बताना चाहता हूँ मैं। जैसे सुलेमान नदवी साहब नदवा के बहुत बड़े आलिम, अभी हाल में उन्होंने गदी से मुतालक एक जुजवा भी लिखा है, छोटी सी किताब की, जिसको बुकलेट कहते हैं, और सामने उन्होंने प्रेजेंट किया अबाउट 8-9 मिनट्स के, बैठ के देखिए आप, यूट्यूब में भी मौजूद है। चीख चीख कर ये कहते हैं कि किस किस को मैं शिया कहूं, ये हदीस मन कुंत मौला फहाद अली मौला मुतवातिर है, ये चेन ऑफ नरेशन है सरकार तक, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, मुतवातिर के माने यही है। यानी उन्होंने माने भी बताए, मजमा भी बताया, सब पूरे जो फा जो गदीर सब कुछ बताया जो हम लोग बताते हैं, और तारीख भी बताई है। देखिए आप टाइप कीजिए सुलेमान नदवी साहब गदीर खुम का, तो आपको सामने आ जाएगा। तो फिर पूरा परेशानी किया, मन को तो मौला फहादा अली मौला, सरकार ने इस हदीस से पहले ये बयान किया कि अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, औलवियत में नहीं रखता तुम्हारे में। सबों ने कहा भला, यस भला भला, यकीनन है। कहां से कुरान की आयत, सूरह अहज़ाब में, नबी औला मिन अल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, औलवियत के माने अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी। इन्हें कलमा पढ़ने के बाद मैं अपनी अथॉरिटी खो लिया, मैं जैसे मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, जैसे ही मैंने कह दिया, यानी मैं दे दिया अपनी पूरी अथॉरिटी को हवाले इस्लाम के, वो अब मुस्लिम तस्लीम कर दिया मैंने। अब फिर उसके बाद मेरी आड़ नहीं चला सकती, मेरी अड़ंग नहीं चला सकता मैं, मुझे जाना पड़ेगा कवानीन इस्लाम के अंदर। जब कवानीन इस्लाम के अंदर जाना है तो फिर सवाल क्या है। तो उन्होंने ये पहले हदीस सरकार ने फिर तो पूछ लिया, सबों से राय लिया, सबसे कहा क्या मैं तुम में औला नहीं हूँ, औलावियत नहीं रखता, अथॉरिटी नहीं रखता। सबों ने कहा यस भला। फिर उसके बाद हाथ उठा करके मौला अली का मजमे की तरफ करके, मन कुन तो मौला फहाद अली मौला, मैं जिस जिस का मौला हूँ ये अली भी उनका मौला है। अल्लाह, उन्होंने 40-50 हज़ार का मजमा कहा है, लेकिन अल्लामा आमिनी ने लीस्ट 80,000, 124,000 तो उमूमन हम सुनते ही रहे। और सरकार के आखिरी लम्हात में, उसके बाद सरकार फिर हज को नहीं जा सके, उसके बाद 2-2.5 महीने के अंदर, 70 दिन के अंदर, गदीर के वाकये के 70 दिन के अंदर इस दुनिया से चले। ये वाकया, और उसके बाद इसी में सुलेमान नदवी साहब ने ये मुसलसल, सरकार ने उसी खुतबे में उदक्किरुकुमुल्लाह अहले बैती, उदक्किरुकुम 4 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की गहराई से रो के पीट के ये कहा है कि तुम्हें अल्लाह के लिए अहले बैत से मुतालिक तुमको याद दिलाता हूँ, अहले बैत से मुतालिक तुमको याद दिलाता हूँ, अहले बैत से मुतालिक। जब अहले बैत सब मान रहे हैं तो कहाँ प्रॉब्लम है, सिवाय एक नासिबी, एक थोड़ा सा ग्रुप है जो बिल्कुल मुसलमान है, बहुत छोटा सा ग्रुप है, उनकी कोई परवाह भी ना कीजिए। यजीदी जो अपने आप को कहते हैं, छोटा सा ग्रुप है, वो भी ये हिजाज का माल खाया हुआ, बेदीनों का माल खाया, वो भी इस्लाम का माल है, मुसलमानों का। उनकी बात के अलावा 95% प्लस मुसलमान अहले बैत को मानते हैं। तो अहले बैत कौन है, डेफिनेशन क्या है, तो हमारे यहां इसको भी मानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास 12 होंगे, 12 भी मिन कुरैश होंगे। वो लिस्ट बता दीजिए भी आप, कौन है 12 सुनाई, कितना सुनते रहते हैं हमेशा से, हमेशा सुनते हैं, तो बोलते नहीं, बताइए भाई। हमारे यहाँ रात को, आधी रात को किसी 7-8 साल के बच्चे को इमामों के नाम, वो बच्चा पूरे इमामों के नाम गिना देगा। तो इमामत को हम ओह दया इलाही मानते हैं और हमको ये 4 दिन बहस करनी है। इमामत एक मौजजा है, इमामत और मौजजा मैं आज पेश करना चाहता हूँ। इमाम जवाद अलैहि सलात व सलाम 9वें इमाम है हमारे, और आपकी विलादत 195 हिजरा है, 195, और शहादत 220, यानी 25 ईयर्स के यंग मैन को जहर दे करके मारा गया बनी अब्बास की तरफ से, लानतुल्लाह अलैहिम। ये 8 इमामों के बाद 9वें पहले इमाम है जिनको इमामत 7 ईयर्स या 8 ईयर्स में मिल रही है, 7 साल। मैं यहां अपने मोमिनीन से मुखातब हूं, शियों से मुखातब हूं, हमारा दीन मंतेक लॉजिक पर मबनी है, और जो मंतेक हटा दे तो फिर वो हमारा दीन नहीं है। साइंटिफिक प्रूफ का नाम शीइज्म है, अकली दलाइल का नाम शीइज्म है, बेअकली लफाजी का नाम दीन नहीं है। जरा सा आसानी से हर चीज को मत लीजिए। अगर कोई खतीब इस तरह से खिताबत करे कि इमाम अली को अल्लाह की जगह रिप्लेस कर दे, उसका दीन से अली से मौला अली से कोई राबिता नहीं है। ये अकली उसी दलील से, जिस दलील से हमने अली को माना है, उसी दलील से हमने ये हुदूद इमाम मासूमीन से सीखी है। तो पहला इमाम है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, जिनका नाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है, जिनके वालिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, जिनके फर्जंद इमाम हादी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है, उनको भी इमामत 8वें 9वें साल में। 3 इमामों को इमामत अर्ली एज में मिली है, एक इमाम जवान, दूसरे इमाम हादी और तीसरे इमाम जमाना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, और द एज ऑफ 5, 5वां साल, 260 हिजरा में इमाम आस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत है, और इमाम जमाना की विलादत 255 है। तो ये 3 इमाम है। तो फर्स्ट इमाम जो अर्ली एज में इमामत को प्रोक्लेम कर रहे हैं, इमामत के ओहदे पर फायज हैं, वह इमाम जवाद अलैहिस्सलाम। गौर करें आप। अच्छा, हिस्ट्री उठाइए, शियों ने रिएक्ट किया है। शियों से मुराद वो लोग जो इंटेलेक्चुअल शिया हैं, उन लोगों ने इमाम रजा से भी पूछा है, खुद इमाम जवाद से भी पूछा है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम से जिस तरह के तरीका है, हर इमाम से पूछते थे कि आपके बाद कौन होगा, इमाम मासूमीन बताते थे कि हमारे बाद कौन होगा। ये बताते थे कौन, देखिए गौरत अच्छी तरह से। इमाम ये बताते थे, पॉइंट करते थे, इमाम जवाद अलैहि सलातो सलाम को के फर्जन इमाम रदा के फर्जन इमाम जवाद ताखिर से पैदा हुए हैं, और लोगों की जो है क्यूरियासिटी बढ़ती जा रही है, और हम पहले से फहरिस्त तैयार है 12 की, 12 किस किस के बेटे होंगे, कौन कौन होंगे, लोग क्यूरियस हैं कि मौला आपके बाद क्या होगा। बाज लोग शकुक में मुबतला हैं कि इमाम रजा भी इमाम है कि नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तारीफ पढ़िए आप अच्छी तरह से। तो इमाम जवाब से, इमाम रजा से पूछा गया कि आपके बाद कौन है, इमाम ने कहा ये अबू जाफर, यानी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बचपना था। तो शियों ने, जो इंटेलेक्चुअल शिया थे, जो इमाम से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने रिएक्ट किया कि मौला ये कैसे मुमकिन है, हाउ इज इट पॉसिबल, कि अभी तो ये बच्चा है ना भाई। मौला ने फिर दलील पेश की कि क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा कि हजरत ईसा ने झूले ही से ऐलान नबुवत किया है, इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब व जालनी नबिया, ये नहीं, इमाम अलैहि सलातु सलाम फरमा रहे हैं इमामत हमारे घर की चीज नहीं है, ये ओहदे इलाही है। वल्लाहु यालम हैथु यजअलु रिसालतहु, रब्बो का यखलुक मा यशा व यख्तार मा काना लहुमुल खियरा। अल्लाह जिसको चाहता है पैदा करता है, क्रिएट करता है, जिसको चाहता है चुनता है। पैदा करना चुनना अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो अब आइए जरा सा मैं आपको बताऊं कि 12 इमामों ने, किस इमाम ने किस एज में इमामत को लिया, इमामत के ओहदे को पर फायज हुए। मौला अमीर मोमिनीन बस 33 ईयर्स, 33 साल थे। मौला इमाम हसन 37 साल, 37 ईयर्स। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 47। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम 23 ईयर। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम 38 ईयर। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम 31 ईयर। इमाम कादिम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज 20 ईयर। इमाम रदा अलैहि सलातो सलाम 30 ईयर। अगर अब तक जो 9 इमामों के नाम मैंने गिनाया, जो लीस्ट है इमाम काजिम अलैहि सलातो, इमाम बाबुल हवाइज, इमाम काजिम, मुसनद जाफर, कितने साल में? 20वें साल में। कोई भी उससे नीचे नहीं है, सब उसके ऊपर है। 20 से लेकर 40 ईयर्स, 47 ईयर्स तक इमाम हुसैन अलैहि सलातो सलाम 47 ईयर्स इमामत को जिन्होंने लिया है, या ऑफिस ऑफ इमामत को जो लिया है, यानी अल्लाह ने उन्हें इमामत के ओहदे पर जो फायज किया। बस इसके माने नहीं कि पहले इमाम नहीं थे, यानी एक तो दीन है, दीन की मुहाफिज, पहले मुहाफिज दीन थे, बाद में दीन, इस तरह से सिस्टम है। रसूलुल्लाह जब तक हैं उस वक्त है मौला अली, हत्ता बहुत ही अच्छी चीज यह है कि नहजुल बलागा कलाम मौला अमीर मोमिनीन, सरकार की जिंदगी में कोई कलाम नहीं मिलता, कितनी खूबसूरती है। और जो भी कलाम मौला का है सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद है। मैंने ओहदे इमामत एट प्रेजेंट, तो 9 इमामों में सबसे कम एज में जो लिए हैं अब तक इमाम मुसे काजिम बाबुल हवाइज अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इमाम जवाद हुआ है तो वह इमाम है जो 7 to 8 years के अंदर इमामत के ओहदे पर फायज हुए हैं। और ये सवाल है, ऑब्वियस सवाल है, रिएक्शन है और खूबसूरत रिएक्शन है। लोग ट्रैवल किए हैं मीलों इस बात को समझने के लिए, है कौन हमारा इमाम। शीजम हमारे हाथ में ऐसे ही हाथ में इजी नहीं आया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारे बुजुर्गों ने। और ये हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि हमारे जवान बच्चों को कि व्हाट इट इज, व्हाई सो इम्पोर्टेंट। लॉजिक या मंतिक, जब इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान, यानी इमाम रदा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, अभी 7 साल के बच्चे के सामने बैठना, 7 ईयर्स का बच्चा है भाई, और उसको कबूल करना एज ए इमाम, नॉट ए जोक। बहुत बहुत ही खूबसूरत। तो जिस तरह से इमाम रदा अलैहिस्सलाम से पूछा गया हु इज आफ्टर यू, तो इमाम ने कहा ये बच्चा, लोगों ने ताज्जुब किया, तो उन्होंने कहा क्यों ताज्जुब करते हो, मिसाल कहां से? कुरान से। किसकी मिसाल? नबी की मिसाल। यह है मौजजा, यानी इमामत और मौजजा हमारी बहस चारों दिन 7 साल का एक लड़का इमामत के ओहदे पर फायज हो रहा है, और अपने भी गैर भी बहुत ही गौर से देख रहे हैं कि इसके पास आया वो एबिलिटी है। सब जानते हैं, अपने वाले तो यकीन है कि इलाही ओहदे वालों को उनके पास इल्म होना जरूरी है, इल्म लदुन्नी होना जरूरी है, उनके पास इस्मत होना जरूरी है, हमारा अकीदा है। और जो गैर है वो लोग ये देखना चाहते हैं कि यह हकीकत है या नहीं है। बहुत गौर करें बहुत अच्छी तरह से, और अगर बच्चे देख रहे हैं, अगर यंगर जनरेशन नहीं है तो आप लोग जो लोग गौर से देख रहे हैं अपने बच्चों को ये रिलेट कीजिए, ये चीज़ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इमामत ओहदे इलाही है, डिजिग्नेशन फ्रॉम अल्लाह एज लाइक नबी रसूल, जिस तरह से नबी अल्लाह बनाता है, रसूल अल्लाह भेजता है, उसी तरह से इमामत भी अल्लाह के हाथ में, बंदों के हाथ में नहीं है। ये जो दो मेजर ग्रुप बने हैं रसूलुल्लाह के बाद, इसी एक मसले पर है। ये झगड़ा नहीं था कि इमाम नहीं चाहिए हमें, सभी लोग कहते थे कि लाबुद्दा लिन्नास अमीर, हमको चाहिए। कुछ कह रहे थे कि हम चुन लेंगे, कुछ कह रहे थे चुनने का हक ही नहीं, चुना हुआ है, रब्बो का यखलुको मा यशाउ इख्तियार। और आज भी ये जो टग ऑफर है, टग ऑफर इसी वजह से है, इसमें टग ऑफर की जरूरत ही नहीं। हमें आखिरत है, लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो बैठना है, समझिए, मेरी आखिरत का मसला है। कभी मत कही कि इन्ना वजदना अलैन अलै इन्ना वजदना आबाना आला उम्मती, हमने आबा अजदाद को यही से पाया, इसीलिए हम भी उसी में हैं, उसी आइडियोलॉजी पे हैं। वाला आसारे में हत, उनके ही जो छोड़े हुए फुट स्टेप्स हैं उन पर चल रहे हैं। हम लोग कहते हैं हो सकता है बाप मेरे वालिद गलत काम किए हो, गलत गलत आइडियोलॉजी को रखे हों, मुझे देखना है कि मेरे वालिद या कुरान और सरकार की सच्ची हदीसें इनके मुताबिक हैं कि नहीं है, इसलिए कि अकीदे का मसला मेरी कब्र में है, मेरे आखिरत में है, बरजख में है। हमारे संडे रिवाइवल क्लास में किसी ने बेहतरीन सवाल किया था, कब्र में बरजख में आमाल जो है, हमारी पूरी जिंदगी रिप्ले होगी, और इवेंट तो जमाना है, वहां पर जो गलतियां हैं वहां पे पाक साफ होकर के कहीं जाकर कयामत में निकलना है, फिर शफात होगी वगैरह। मगर कब्र में इदा जा अकल मलिकान अल मुकर्रबान मुकर्रबान मिन इंद अल्लाह तबाराक व तआला व सालाक अन रब्बिक वन दीनिक वन किताबिक वगैरह, सवाल पूछेंगे। तलखीन सुनते कि नहीं सुनते हैं आप? सिर्फ वही मत सुनिए, कभी बाकायदा हुआ तो किसी आलिम से बैठ करके समझिए, तलकिन बेहतरीन चीज़ है। तलकिन कहते हैं किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली रिपीट करना, सो दैट यू रिमाइंड योर सेल्फ, तो भूले नहीं। तो दो मरतबा तलकिन होती है, एक तो दफन से पहले, एक रिश्तेदार कब्र पे उतरे, सीधा हाथ सीधे कंधे पर, बाया हाथ बाया कंधे पर हिलाए, इस्मा इफहम सुन और समझ, क्या डिक्टेट किया जा रहा है? अमल नहीं, अमल तो साथ ले जा रहा है, अकीदा फेथ। और फेथ क्या है बताया जा, तुम्हारा अकीदा क्या है बताया जा रहा है। दो फरिश्ते आएंगे, दो फरिश्ते आकर के सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारी किताब कौन है, तुम्हारे रसूल कौन है, तुम्हारे इमाम कौन है। मैं तो हमेशा से कहा करता हूं कब्र में सवालात जो हैं केजी जूनियर के हैं, यानी हमारी दीनियात की किताबें जो सिलेबस हैं, आप कोई भी सिलेबस उठा करके देखिए, मदरसा .com भी है वगैरह, बहुत से अच्छे खूबसूरत सिलेबस हैं। इब्तदाई चीजें हैं, अल्लाह एक, पंजतन पांच, इमाम 12, मासूम 14, अल्लाह और मासूम 14 बचपने में सिखाया जा रहा है, और कब्र में वही सवालात हो रहे हैं, बचपने वाले ही सवाल हो रहे हैं, लेकिन आसान है जवाब देना ना? क्यों नहीं है? इसलिए कि मौत के बाद के हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिस तरह से ड्रीम मेरे कंट्रोल में नहीं है, शेर हमला कर रहा है, मैं भागना चाह रहा हूं, मैं नहीं भाग सक रहा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से समझिए, तो कब्र की हालत, बरजख की हालत मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे आमाल के कंट्रोल में। दुनिया में तौहीद का अकीदा उसका पूरा भरपूर अकीदा, पूरी जिंदगी उसने तौहीद पर मी 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 नहीं करता रहा, बल्कि हमेशा वमा तशाऊना इल्ला इंशा अल्लाह इन्नमा नुतिउकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। हमेशा अल्लाह 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 अल्लाह, हम नहीं अल्लाह, हम नहीं अल्लाह, हम नहीं अल्लाह, हमेशा अल्लाह अल्लाह कहने वाले जब कब्र में पूछा जाएगा मन रब्बक, वो कहेंगे अल्लाह। अगर दुनिया में मैं मन रब्बक आना, फिर लगाओ भी इसको जरा सा दो चार रिमेंड में डालो, फिर देखा जाएगा दिमाग इसका कब ठीक होगा। तो तौहीद नर्चर होना चाहिए हमारी लाइफ में। कम मिन कबीहिन सतरता, कम मिन फादिहिन मिन अलबलाए अकलता, कम मिन मकरूहिन दफाता, कम मिन थनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरता। यू 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 नॉट मी, मैं नथिंग, आई एम नथिंग, ये तौहीद है। इसीलिए हर नमाज में ये दुआ है, नमाज के बाद ताकीबात में, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफसक इन्नक इल्लम तुअर्रिफनी नफसक लम अरिफ रसूलक, वल्लाह आई वांट टू नो यू, इफ आई डोंट नो यू आई विल नेवर गोइंग टू नो द प्रॉफिट। सो फाउंडेशन इज तौहीद। तौहीद इज नॉट अटरेंस ओनली, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, बल्कि पूरे मेरे वजूद में, मेरी जिंदगी में तौहीद आना चाहिए। उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ अटेरेंस नहीं है, शरीयत जो उन्होंने दी है उस पर चलना है। उसी तरह मौला अमीर मोमिनीन और 12 इमामों के नाम रटना नहीं है, बल्कि इमामों के बताए हुए रास्ते पे चलना है, तब कहीं जाकर के कब्र में न जाना। तो खुलासा आज का यह है कि इमामत जिस तरह से नबी अल्लाह बनाता है, इमाम को भी अल्लाह बनाता है। और ये दलील पेश हो चुकी है, तारीख उठा करके देखिए, मामों ने ना रशीद गैर रशीद ने लोगों के ताने सुने कि लोग क्या क्या कह रहे हैं इससे मुतालक, ये बच्चा है इसको कैसे वगैरह, तो उसने महफिल सजाई। स्कॉलर्स ऑफ द टाइम को बुलाया, उस वक्त का जॉइंट स्कॉलर यहया इब्न अक्थम, तारीख हिस्टोरिकल एविडेंस उठा करके देखिए, ये मौजूदा है। उलमा स्कॉलर्स बैठे हुए एक बच्चे के सामने, मैं तो कहता ये बैठना खुद दलील है कि मानना पड़ता है, या ये कि तमाशा देखने के लिए आए थे कि आप कैसे हार आ गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, या देखना चाह रहे थे कि सच है क्या चीज है। तो दरबारे फिरौन में जादूगरी का मौजूदा, दरबारे मामों ने गैर रशीद में इल्म का मौजूदा है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम। मिरेकल ऑफ साइंसेस नॉलेज, 3000 सवालात, ये जो सीटिंग है दो दो तीन तीन दिन चली है, और स्कॉलर सवाल पे सवाल कर रहे हैं, इमाम हर सवाल का जवाब कुरान से दे रहे हैं, और लोगों की हैरत का अंदाजा नहीं है। तो मालूम हुआ एक इल्म है जो कसबी है, इंसान स्ट्रगल करता है कि जूनियर से ओ लेवल ए लेवल ग्रेजुएशन, उसके बाद PhD, इसको यू हैव टू अर्न इट। मगर दिस इमामत झूले से इन्नी अब्दुल्ला व आतानी अल किताब वो जहालानी नबिया। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से पूछा गया इमामत ये आपके एज में, सुलेमान कितने थे, याहिया के लिए कुरान क्या कहता, हजरत याहिया के लिए। तो ये इल्मे लदुन्नी एक साइंस, इस साइंस का समझना हो तो कुरान समझिए। और शुरू कहां से होती है, युमिनून बिलगैब से, और जब वहां यकीन पैदा होगा तो फिर इमामत में सब में यकीन पैदा होगा। अल्लाह से, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफीक दे इस घराने से मुंसलिक रहें और मोमिनीन से गुजारिश करता हूं कि इमोशनल अटैचमेंट हमारा नहीं है, रैशनल है, और हमारी मोहब्बतें इमोशनल नहीं है, रैशनल मोहब्बतें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।